पेज नंबर 76, ईर्ष्या, रामचंद्र शुक्ल। जैसे दूसरों के दुख को देख दुख होता है, वैसे ही दूसरे के सुख या भलाई को देखकर भी एक प्रकार का दुख होता है, जिसे ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या की उत्पत्ति कई भावों के संयोग से होती है। इससे इसका प्रादुर्भाव बच्चों में कुछ देर में देखा जाता है और पशुओं में तो शायद होता ही नहीं हो। ईर्ष्या एक संकर भाव है जिसकी संप्राप्ति आलस्य, अभिमान और नैराश्य के युग से होती। जब दो बच्चे किसी खिलौने के लिए झगड़ते हैं, तब कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि एक उस खिलौने को लेकर फोड़ देता है, जिससे वह किसी के काम में नहीं आता। इससे अनुमान हो सकता है कि उस लड़के के मन में यही रहता है कि चाहे वह खिलौना मुझे मिले न मिले, दूसरों के काम में ना आए, अर्थात उसकी स्थिति मुझसे अच्छी न रहे। ईर्ष्या पहले पहल इसी रूप में व्यक्त होती है। ईर्ष्या प्राप्ति की उत्तेजित इच्छा नहीं है। एक के पास कोई वस्तु है और दूसरे के पास नहीं है, तो वह दूसरा व्यक्ति इस बात के लिए तीन प्रकार से दुख प्रकट कर सकता है। नंबर 1, क्या कहें, हमारे पास भी वह वस्तु होती। नंबर 2, हाय, वह वस्तु उसके पास न होकर हमारे पास होती तो अच्छा था। नंबर 3, वह वस्तु किसी प्रकार उसके हाथ से निकल जाती, चाहे जहां जाती। इन तीनों वाक्यों को ध्यान पूर्वक देखने से जान पड़ेगा कि इनमें दूसरे व्यक्ति की ओर जो लक्ष्य है, उसे क्रमशः विशेषत्व प्राप्त होता गया है और वस्तु की ओर जो लक्ष्य है वह कम होता गया। पहले वाक्य से जो भाव झलकता है वह ईर्ष्या नहीं है, साधारण स्पर्धा अथवा लाभ की उत्तेजित इच्छा का एक अच्छा रूप है। उसमें वस्तु की ओर लक्ष्य है, व्यक्ति की ओर नहीं। ईर्ष्या व्यक्तिगत होती है और स्पर्धा वस्तुगत। दूसरे वाक्य में ईर्ष्या का कुछ और तीसरे में पूरा आभास। इन दोनों में से एक दूसरे में दूसरे को वंचित ना कर सकने इन दोनों में से एक में दूसरे को वंचित न कर सकने का दुख गौण और दूसरे में प्रधान या एकांत है। इस स्पर्धा में किसी सुख, ऐश्वर्य, गुण या मान से किसी व्यक्ति विशेष को संपन्न देख अपनी त्रुटि पर दुख होता है, फिर प्राप्ति की एक प्रकार की उद्वेगपूर्ण इच्छा उत्पन्न होती है, या यदि इच्छा पहले से होती है तो उस इच्छा को उत्तेजना मिलती है। इस प्रकार की वेगपूर्ण इच्छा या इच्छा की उत्तेजना अंतःकरण की उन प्रेरणाओं में से है जो मनुष्य को अपनी उन्नति साधन में तत्पर करती है। इसे कोई संसार को सच्चा समझने वाला बुरा नहीं कह सकता। यह उत्तेजना ईश्वर गुण या मान के किसी चित्ताकर्षक रूप या प्रभाव के साक्षात्कार से उत्पन्न होती है, और कभी कभी उस ईश्वर गुण या मान को धारण करने वाले पूर्व स्थिति के परिज्ञान से बहुत बढ़ जाती। किसी अपने पड़ोसी या मित्र की विद्या का चमत्कार या आदर देख विद्या प्राप्ति की इच्छा उत्तेजित होती है, और यह जानकर कि इससे पहले वह एक बहुत साधारण बुद्धि और चित्त का मनुष्य था, यह उत्तेजना और यह जानकर कि पहले वह एक बहुत साधारण बुद्धि या चित्त का मनुष्य था, यह उत्तेजना आशा प्रेरित होकर और भी बढ़ जाती है। प्राप्ति की इस उत्तेजित इच्छा के लिए संपन्न व्यक्ति ऐसा मूर्तिवान और प्रत्यक्ष आधार हो जाता है, जिससे अपनी उन्नति या की भी आशा बंध सकती है और कार्यक्रम की शिक्षा मिलती है। किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा करने वाले को किसी ऐसे व्यक्ति को देख जिसने अपने पुरुषार्थ से वह वस्तु प्राप्त की हो, कभी कभी बड़ा सहारा हो जाता है और वह सोचता है कि जब उस मनुष्य ने उस वस्तु को प्राप्त कर लिया, तब क्या मैं भी नहीं कर सकता। ऐसे संपन्न व्यक्ति की ओर जो इच्छुक या स्पर्धावान का बार बार ध्यान जाता है, वह उसकी स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए। इस स्पर्धा में अपनी कमी या त्रुटि पर दुख होता है, दूसरे की संपन्नता पर नहीं। इस स्पर्धा में दुख का विषय होता है, मैंने उन्नति क्यों नहीं की, और इस ईर्ष्या में दुख का विषय होता है, उसने उन्नति क्यों की। इस स्पर्धा संसार में गुणी, प्रतिष्ठित और सुखी लोगों की संख्या में कुछ बढ़ती करना चाहती है और ईर्ष्या में कमी। ऊपर के विवरण से यह बात झलक गई होगी कि ईर्ष्या एक अनावश्यक विकार है। इससे उसकी गणना मूल मनोविकारों में नहीं हो सकती। यह यथार्थ में कई भावों के विचित्र मिश्रण से संगठित एक विष है। जब किसी विषय में अपनी स्थिति को रक्षित रख सकने या समुन्नत कर सकने के निश्चय में अयोग्यता या आलस्य आदि के कारण कुछ कसर रहती है, तभी इच्छा का उदय होता है। किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति उस विषय में हमारे तुल्य या हमसे बढ़कर न होने पाए, यही इच्छा बढ़कर द्वेष में परिवर्तित हो जाती है और तब वे उस दूसरे व्यक्ति का अनिष्ट न केवल उस विषय में बल्कि प्रत्येक विषय में वांछित हो जाता है। बैर और द्वेष में अंतर यह है कि बैर अपनी किसी वास्तविक हानि के प्रतिकार में होता है, पर द्वेष अपनी किसी हानि के कारण या लाभ की आशा से नहीं किया जा सकता। यह बात ध्यान देने की है कि ईर्ष्या व्यक्ति विशेष से होती है। यह नहीं होता कि जिस किसी को ऐश्वर्य गुण या मान से संपन्न देखा उसी से ईर्ष्या हो गई। ईर्ष्या उन्हीं से होती है जिनके विषय में यह धारणा होती है कि लोगों की दृष्टि हमारे साथ साथ उन पर भी अवश्य पड़ेगी या पड़ती होगी। अपने से दूरस्थ होने के कारण अपने साथ साथ जिन लोगों का ध्यान जाने का निश्चय नहीं होता उनके प्रति ईर्ष्या नहीं उत्पन्न होती। काशी में रहने वाले किसी धनी को अमेरिका के किसी धनी की बात सुनकर ईर्ष्या नहीं होगी। हिंदी के किसी कवि को इटली के किसी कवि का महत्व सुनकर ईर्ष्या नहीं होगी। संबंधियों, बाल सखाओं, सहपाठियों और पड़ोसियों के बीच ईर्ष्या का विकास अधिक देखा जाता है। लड़कपन से जो आदमी एक साथ उठते बैठते देखे गए हैं उन्हीं में से कोई एक दूसरे की बढ़ती से जलता हुआ भी पाया गया है। यदि दो साथियों में से कोई किसी अच्छे पद पर पहुंच गया तो वह इस उद्योग में देखा जाता है कि दूसरे किसी अच्छे पद पर न पहुंचने पाए। प्राय अपनी उन्नति के गुप्त बाधकों का पता लगाते लगाते लोग अपने किसी बड़े पुराने मित्र तक पहुंच जाते हैं। जिस समय संसर्ग सूत्र में बंद कर हम औरों को अपने साथ एक पंक्ति में खड़ा करते हैं उस समय सहानुभूति, सहायता आदि की संभावना प्रतिष्ठित होने के साथ ही साथ ईर्ष्या और द्वेष की संभावना की नींव भी पड़ जाती है। अपने किसी विधान से हम भलाई ही भलाई की संभावना का सूत्रपात करें और इस प्रकार भविष्य के अनिश्चय में बाधा डालें, यह कभी हो ही नहीं सकता। भविष्य की अनिश्चयात्मकता अटल और अजेय है। अपनी लेख विद्या बुद्धि से हम उसे बिल्कुल हटा नहीं सकते। अब ध्यान देने की बात यह निकली कि ईर्ष्या के संसार के लिए ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या के पात्र के अतिरिक्त स्थिति पर ध्यान देने वाले समाज की भी आवश्यकता है। इसी समाज की धारणा पर प्रभाव डालने के लिए ही ईर्ष्या की जाती है। ऐश्वर्य गुण या मान का गुप्त रूप से बिना किसी समुदाय को वेदित कराए सुख या संतोष भोगने के लिए नहीं। ऐश्वर्य या गुण में हम चाहे किसी व्यक्ति से वस्तुतः बढ़कर या उसके तुल्य ना हों, पर यदि समाज की यह धारणा है कि हम उससे बढ़कर या उसके तुल्य हैं तो हम संतुष्ट रहेंगे, ईर्ष्या का घोर कष्ट न उठाने जाएंगे। कैसी अनोखी बात है कि वस्तु प्राप्ति से वंचित रहकर भी हम समाज की धारणा मात्र से संतुष्ट रहते हैं। ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न एक विष है। इसके प्रभाव से हम दूसरे की बढ़ती से अपनी कोई वास्तविक हानि न देखकर भी व्यर्थ दुखी होते हैं। समाज के संघर्ष से जो अवास्तविकता उत्पन्न होती है वह हम पर प्रभाव डालने में वास्तविकता से कम नहीं, वह हमें सुखी भी कर सकती है, दुखी भी। फारसी मसल है, मार्गे अम्बो जसने दारद। हम किसी कष्ट में हैं, इसी के बीच में कोई दूसरा व्यक्ति हमसे अपना भी कष्ट वर्णन करने लगता है तो हमारे मुंह पर कुछ हंसी आ जाती है और हम कुछ आनंदित होकर कहते हैं, भाई हम भी तो इसी बला में गिरफ्तार हैं। यदि 10-5 आदमी वही कष्ट बताने वाले मिले तो हमारी हंसी कुछ और बढ़ भी जाती है। एक बार किसी ने अपने संबंधी के मरने पर एक विद्वान से पूछा कि हम धैर्य कैसे धारण करें। उसने कहा, थोड़ी देर के लिए सोचो कि इसी संसार में लाखों अनाथ इधर उधर ठोकर खा रहे हैं, लाखों बच्चे बिना माँ बाप के रो रहे हैं, लाखों विधवाएं आंसू बहा रही हैं। यदि हमें कोई कष्ट है तो क्या दूसरों को भी उसी कष्ट में देखकर थोड़ी देर के लिए हमारा वह कष्ट सचमुच घट जाता है? यदि नहीं घटता तो यह हंसी कैसी, यह धैर्य कैसा? यह हंसी केवल स्थिति के मिलान पर निर्भर है जिससे अपनी स्थिति के विशेषत्व का परिहास होता है। यह लोक संश्रय का एक गुण है कि कभी कभी स्थिति के बने रहने पर भी उसके विशेषत्व के परिहार से तत्संबंधी भावना में अंतर पड़ जाता है। पर यह अंतर ऐसा ही है जैसे रोते रोते सो जाना या फिर फोड़ा चिराते समय क्लोरोफॉर्म सूंघ लेना।